हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन बेचैनी से उस हवेली की ओर आने वाले हर रास्ते की ओर देखने लगा था कि न जाने किस रास्ते से उसे उसकी बीवी तारा आई हुई दिखाई देने लगे। तभी अचानक तारा ने देखा कि कितनी ही सारी लड़कियों का झुंड अमन की हवेली की ओर ही आ रहा था। तारा और सोनल परी का ये देखकर हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था। तभी अमन उन सभी लड़कियों की ओर देखने लगा था। कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि हो सकता है इन सभी लड़कियों के झुंड पर तारा भी मौजूद हो। और वो सभी लड़कियां आकर अमन के पास आकर खड़ी हो गई थीं। अमन हर एक लड़की को अच्छी तरह से देखने के बाद उनकी ओर देखकर कहने लगा था, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आई हो? तभी उन सभी लड़कियों के झुंड के बीच में से एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की थोड़ा सा आगे आई थी और अमन के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी, अमन सिंह राठौर, क्या तुम हमें नहीं जानते हो? एक बात बताओ, तुम्हारी ये हवेली सालों साल बंद रहती है, सिर्फ एक दो दिन के लिए तुम लोग यहाँ आते हो, उसके बाद यहाँ से चले जाते हो, और इस गांव में कब क्या होता है इसके बारे में ईशाना को पता ना हो तो बताइए, कैसे हो सकता है? जैसे ही उस लड़की ने वहाँ आकर इस तरह की बातें करना शुरू की, अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो उसकी ओर देखकर कहने लगा था, तुम कहना क्या चाहती है और हो कौन तुम? तभी ईशाना थोड़ा सा आगे आई थी और अमन की ओर देखकर कहने लगी थी, मैं इस गांव की मुखिया की बेटी हूँ और मैं शहर से पढ़ लिख कर यहाँ आई हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और मैं तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें जानती हूँ और मैंने टीवी इंटरव्यू वगैरह हर जगह देखा है, लेकिन अब इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है क्योंकि अपने पिता के बाद में मुखिया बन गई हूँ। तो इस गांव की मैं नई मुखिया हूँ और जैसे ही मुझे पता चला कि गांव में तुम आए हो तो इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए चली आई। जैसे ही ईशाना ने सारी बातें करना शुरू की तब अमन काफ़ी हैरान हो गया था और कहने लगा था, मुखिया, वो भी एक लड़की? वाकई गांव काफ़ी तरक्की करने लगा है। तभी ईशाना हल्का सा अमन के पास जाकर खड़ा हो गई थी और कहने लगी थी, तुम दिखने में तो बड़े ही डैशिंग हैंडसम हो, मुझे लगता है कि तुम पेपर्स, मैगजीन, टीवी में से भी ज़्यादा हैंडसम तो रियल में दिखाई देते हो। मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी कहाँ है? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग गई है? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग गई है तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। जैसे ही ईशाना ने ये कहा, अमन को भी एपी उस लड़की पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन अमन को अभी एक नॉर्मल इंसानी तरीके का ही बर्ताव करना था, वरना तारा के बारे में बोलने पर उसका दिल कर रहा था कि वो अपने सामने खड़ी हुई लड़की को अपने गुस्से की आग में जलाकर राख कर दे। वही तारा परी जो को उन सबकी बातें सुन रही थी और उस लड़की की बात सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी और वो गुस्से से वहाँ से सीधा अंदर चली गई थी और वहाँ जाकर गुस्से से उसने सबसे पहले अपने गले की जादुई माला को उतार दिया था और सोनल परी की ओर देखकर कहने लगी थी, आखिरकार उस लड़के की हिम्मत कैसी हुई? कौन है वो लड़की? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी ही आंखों के सामने मेरे पति के बारे में इस तरह की बातें करने की? वो होती कौन है ये कहने वाली कि मैं भाग गई हूँ? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम देखना, मैं अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर मैं उसे छिपकली बना दूंगी, मैं उसे डायन बना दूंगी, मैं उसे कुछ भी बना दूंगी, मैं उसे बकरी बना दूंगी। ऐसा कहकर तारा परी गुस्से से लाल होने लगी थी और तारा की हालत देखकर सोनल परी जोरों से हंसने लगी थी। उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था और वो तारा की ओर देखकर कहने लगी, तारा, तुम एक परी हो, तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकती हो, तुम तो इंसानों के बीच रहकर पूरी तरह से इंसान बन गई हो, ये क्या कह रही हो तुम? तभी अभी तक सोनल परी ने अपनी जादुई माला नहीं उतारी थी तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन तारा परी ने गुस्से से अपनी माला उतार दी थी और वो उस वक्त बहुत ही गुस्से में थी। लेकिन इससे पहले कि सोनल परी उसे आगे कुछ कहती या तारा परी उसे कुछ कहती, तभी करिश्मा की आवाज़ वहाँ गूंजी थी, तारा बेटी। जैसे ही तारा ने करिश्मा जी की आवाज़ सुनी वो हक्का बक्का रह गई थी और तभी उसे अपनी जादुई माला को उतारने का एहसास हुआ था और जल्दी ही उसने पीछे मुड़कर करिश्मा जी की ओर देखा था। करिश्मा जी ने तुरंत आकर तारा को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, मेरी बच्ची, तू आ गई, तुम कैसे आई? आखिरकार हुआ क्या था तुम्हें? किसने कैद किया था? तुम कहाँ थी इतने दिन? करिश्मा जी ने आते ही ढेर सारी बातें करना शुरू कर दिया था और ढेर सारे सवालों की बौछार उस पर कर दी थी। तभी करिश्मा जी के पास हुए अमरेंद्र जी भी वहाँ गए थे और उसकी ओर देखकर कहने लगे थे, तारा बेटी, तुम आ गई, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना हम लोग कितना परेशान हो गए, तुम ठीक तो हो ना? और जिन्नातों का वंशज तो ठीक है ना? तारा बेटी, तुम कहाँ थी? आखिरकार हुआ क्या था? अब तारा पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो तो किसी और बात को लेकर गुस्सा थी, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों को वो क्या जवाब दे। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कुछ जवाब देती, करिश्मा जी खुद ही कहने लगी थी, ज़रूर दादा महाराज ने इसे छुड़ा लिया होगा, इसीलिए सीधा उसे यहाँ भेज दिया होता है ना? मुझे तो यही लगता है, ऐसा कहकर उन्होंने अपने सवालों का जवाब खोज लिया था और तारा ने राहत की सांस ली थी। और तभी करिश्मा जी ने अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा था, सुनिए जी, तारा बेटी आ गई, जल्दी से जाकर अमन को बताइए, बेचारा कब से बाहर खड़ा हुआ हवेली के हर रास्ते को तक रहा है, अभी तक उसकी बीवी नहीं आई। तभी तारा मन ही मन में सोचने लगी थी, आपका बेटा मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, वो किसी लड़की से बातें करने में बिजी है। तभी तारा उस वक्त बहुत ही ज्यादा चुप थी, वो अभी किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, ना ही वो बिना कुछ सोचे समझे ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी। वहीं अमरेंद्र जी जल्दी से बाहर की ओर गए थे, उन्होंने देखा कि कितनी सारी लड़कियों ने अमन को घेरे हुए खड़ी हुई हैं, तो अमरेंद्र जी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के बीच वो अमन को ये नहीं कह सकते थे कि उसकी बीवी तारा आ गई है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं तो हो सकता है कितनी सारी लड़कियों के मन में सवाल पैदा हो जाए कि आखिरकार अमन सिंह राठौर की बीवी गई कहाँ थी। वेल, अमरेंद्र जी बिना अमन को कुछ भी बताए वहां से वापस लौट आए थे और अमन उन सभी लड़कियों से काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा था। सभी लड़कियां अलग अलग तरीके से अमन को प्रपोज करने लगी थी। उस वक्त वो सिर्फ तारा का इंतजार कर रहा था, वो इस तरह से उन लोगों की बकवास नहीं सुनना चाहता था। वहीं ईशाना को अब अमन को बस लगातार घूरे जा रही थी और कहने लगी थी, काश वो उसका पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड ही बन जाए, लेकिन कुछ तो बन जाए, वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ रिश्ते बनाना चाहती है। और कहने लगी थी, चलो अगर तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो वन नाइट स्टैंड कर लो, एटलीस्ट हमें भी अपनी इस हैंडसम सी बॉडी का दीदार करवाओ। ईशाना बड़ी ही फ्रेंडली हो गई थी और वो अमन को हर तरीके से फंसाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अमन लोगों के वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो इस तरह से उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता था, क्योंकि ईशाना उस गाँव की मुखिया थी
और वो वहाँ पर किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था और ना ही कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे उसके जिन होने का सच किसी भी इंसान के सामने आए। और वहीं जैसे ही करिश्मा जी ने अमरेंद्र जी को अकेला आया हुआ देखा तो वो हैरान हो गई थी, उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, आप ऐसे क्यों लौट आए हैं, आखिरकार अमन कहाँ है, अमन कहाँ है, क्या आपने अमन को बताया नहीं कि तारा बेटी आ गई है। तभी अमरेंद्र जी करिश्मा जी की ओर देखकर कहने लगे थे, वो मैं अमन को बताने के लिए ही गया था, लेकिन अमन को कितनी ही सारी गांव की लड़कियों ने घेर कर खड़ा हुआ हुआ है, और अगर उन सब के सामने में बहू के बारे में बताता तो उन सबके मन में बहू के बारे में कितने ही सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, फिर उन सबको सवालों के जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम तो जानती हो ना ये गांव है, इसीलिए मैं उसे बिना कुछ कहे ही वापस लौट आया और मैंने सोचा कि जैसे वो लड़कियां जाएंगी अमन खुद ब खुद अंदर आ जाएगा। तभी करिश्मा जी ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और कहने लगी थी, आपसे कोई काम ढंग से नहीं हो सकता है। तभी उसने तारा परी का हाथ पकड़ा था और कहने लगी थी, बेटा तू चल मेरे साथ, मेरा बेटा तुझे देखने के लिए तड़प रहा है, वो पल पल मर रहा है, तुझे चलना होगा। ऐसा कहकर करिश्मा जी तारा को हाथ पकड़कर बाहर की ओर लेकर जाने लगी थी। वहीं ईशाना, जो कि अमन के साथ इतना फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगी थी, धीरे धीरे वो अमन को छूना चाहती थी, क्योंकि अमन के खूबसूरत नर्म मुलायम होठों को देखकर वो अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठी थी। वो उसको किस करना चाहती थी और जैसे जैसे उसके करीब जा रही थी वैसे वैसे अब अमन को उलझने पैदा होने लगी थीं। अब अमन ने सोच लिया था कि अगर उस लड़की ने ज्यादा बदतमीजी पास करने की कोशिश की तो इसी वक्त उसकी जान ले लेगा। लेकिन तभी इससे पहले कि ईशाना अमन के होठों को चूमती, तभी अचानक से अमन के नाक में तारा परी की खुशबू टकराई थी। उसने अब अच्छी तरह से अपने आसपास देखा था लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। तारा परी की खुशबू आने आने पर अमन के होठों पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई थी। अब अमन की मुस्कुराहट देखकर ईशाना ने समझ लिया था कि शायद अमन उसकी बात सुनकर एग्री हो गया है और इसीलिए वो और भी शेर हो गई और अमन की ओर बदनीयती से आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अमन को छू पाती, अमन ने तुरंत अपना एक हाथ आगे करते हुए उसे रोक दिया था और कहने लगा था, जब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी। जैसे ही अमन ने इस तरह से ईशाना को वहां से जाने के लिए, ईशाना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सारी लड़कियों के बीच अमन ने उसे कहा था कि वो यहाँ से चली जाए, तो इसीलिए उसे अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती सी महसूस हो रही थी और वो अमन की ओर देखकर कहने लगी थी, ओ तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें, और वैसे भी तुम्हारी बेबी की फोटो देखी है मैंने उस दिन तुम्हारी हुई बड़ी सी पार्टी के अखबार में, कोई खास तो दिखाई नहीं देती है। तुम्हारी बेबी तो ऐसा क्या है उसमें जो तुम्हें उसके अलावा किसी और में दिखाई ही नहीं दे रहा है। देखो मुझे, मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, ऊपर से मुखिया हूँ और तुम्हारे साथ मेरे जैसी खूबसूरत स्टाइलिश लड़की ही सूट करती है, और तुम्हारी वो बहन जी टाइप बीवी तारा नहीं, क्योंकि मैंने देखी है तुम्हारी बीवी तारा तुम्हारी पार्टी की फोटोज में, जो गेस्ट तुम्हारी पार्टी में आई थी उन्होंने तुम्हारी फोटोज पोस्ट की थी, इतनी भी खूबसूरत नहीं है वो, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, और मैं तो तुमसे शादी करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो केवल कुछ नाइट स्टैंड करने के लिए कह रही हूँ, तो क्या तुम एग्री हो। जैसे उसने इस तरह से अमन से कहा, अब अमन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। अचानक से अमन उसकी ओर गुस्से से घूरता हुआ बोला था, आइंदा मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाने की कोशिश मत करना, जाओ चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर अमन ने उस लड़की ईशाना को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। और इससे पहले कि ईशाना कुछ कहती, तभी पीछे से करिश्मा जी की आवाज़ आई थी, अमन बेटा। जैसे ही करिश्मा जी की आवाज़ आई और अमन ने अपनी माँ की आवाज़ की दिशा की ओर देखा और अपनी माँ के ठीक बराबर में खड़ी तारापरी को देखा, तो अमन पूरी तरह से हैरान हो गया था। ऐसा लगने लगा था मानो कि उसके पैर वहीं के वहीं जम गए हों, क्योंकि जिन महाराज अमन अपनी जिस बीवी तारा का इंतजार बाहर खड़े होकर खुद कर रहा था और एक फिजूल लड़की की बातों का जवाब दे रहा था, उसे अपनी बीवी जल्दी ही अपनी माँ के ठीक बराबर में खड़ी हुई दिखाई दे गई थी। तारा को देखते ही अमन अपने होशो हवास पूरी तरह से खो बैठा था। हालांकि अभी वो चारों तरफ लड़कियों से घिरा हुआ था, उसके आसपास काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि जैसा सब कुछ थमसा गया हो। वो बड़ी ही बदहवास हालत में सिर्फ और सिर्फ तारा परी की ओर ही देखे जा रहा था। तारा ने उस वक्त एक वाइट रंग का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जिसमें उसके गोरे गोरे मिल्की जैसी स्किन बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, और ऊपर से तारा परी के साथ की वो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिया करती थी। वहीं ईशाना, जो कि अमन को अपनी तरफ सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और तारा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी, जैसे ही उसकी भी नज़र तारा परी पर पड़ी तो वो खुद पलक झपकना भूल गई थी, क्योंकि शायद ही उसने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में कहीं देखी हो। कैसा फील होगा अमन को तारा से मिलने के बाद, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।